जहाँ
लेक्चर बाय बाय हिज ग्रेट सर्व साक्षी प्रभु आठवीं वार सांगन मायापुर ऑन 26th March 2012।
कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था देवकी और वसुदेव के यहाँ, लेकिन भगवान ने अपनी जो लीलाएं हैं वो मथुरा में प्रकट नहीं की, बाल लीलाएं आदि। उन्होंने कहा प्रकट की वो सारी लीलाएं, वृंदावन जाकर नंद महाराज और यशोदा को उन सारे लीलाओं का आनंद प्रदान किया। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी सची माता और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ प्रकट हुए हैं, जो इसके साथी हैं, जिसको योग पीठ कहा जाता है। लेकिन उन्होंने अपने जो अधिक से अधिक लीलाएं हैं वो अपने भक्तों के संग में विशेष रूप से इस भाग में की, जिसको श्रीवास आंगन कहा जाता है। क्या? श्रीवास आंगन। श्रीवास, श्रीवास कौन है वो पर्सनैलिटी? तो श्रीवास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। तो ये श्रीवास पंडित, जिनको श्रीवास पंडित कहा जाता है, चैतन्य भागवत में उनको श्रीनिवास कहा जाता है। तो ऐसे श्रीवास पंडित कृष्ण लीला में थे, क्योंकि जो भी पर्सनैलिटी, जो भी व्यक्ति गौरांग महाप्रभु की लीला में है, वो व्यक्ति या वो पर्सनैलिटी कृष्ण की लीला में वृंदावन में है। जैसे हम कल सुन रहे थे कि जब गौर हरि नाम भगवान को मिला, गौर हरि ये जो नाम है किसने दिया था? गोपियों ने। तो जितनी गोपियां थी वो नवदीप धाम में पुरुष फॉर्म में आकर चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्होंने लीलाएं आदि की। हाँ, तो उसी प्रकार से जो ये श्रीवास पंडित है कृष्ण लीला में नारद है। कौन है? नारद। लेकिन वही नारद गौरांग महाप्रभु के लीला में श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से पहले। जो बांग्लादेश के श्रीहाट जिसको सिलेट कहा जाता है अभी, उस गांव में उनका जन्म हुआ था या प्रकट हुए थे, और बाद में यहाँ आकर उन्होंने निवास किया। और जो चैतन्य महाप्रभु जब अपने लीलाएं करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु बचपन में निमाई पंडित के रूप में फेमस थे। मतलब इतने बड़े स्कॉलर थे निमाई पंडित, छोटे से ही थे, जिनके साथ अपने मित्र चलते थे स्टूडेंट्स आदि। लेकिन नवदीप में सर्व सबसे अधिक वो विद्वान थे, बड़े बड़े भट्टाचार्य या फिर जो बड़े बड़े मिश्र आदि है उन सबको वो पराजित करते थे। चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित जब चलते थे तो सामने गदाधर या मुकुंद आदि कोई भी दूसरे भक्त आते थे तो वो अपना रास्ता चेंज करके चले जाते थे। वो सोचते थे निमाय पंडित मिलेगा, खाली खाली क्वेश्चन पूछेगा, फिर पराजित करेगा, परेशान करेगा, और चलो ना उससे बात ही नहीं करनी है। तो शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो भक्त भाव है और भगवत भाव है इन दोनों को प्रकट नहीं किया था। इस रूप में वो केवल विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे। विद्या और विलास मतलब विद्या, पढ़ाई का मोड में थे। तो कभी कभी ये श्रीनिवास या श्रीवास पंडित जो आयु में बहुत बड़े थे, जो गृहस्थ आश्रम में थे, तो श्रीवास पंडित जब कभी कभी चलते थे तो ये निमाय पंडित किसी के सामने इतना विनम्र नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही श्रीवास पंडित को देखेंगे तुरंत उनको प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। श्रीवास पंडित कहा कहते थे उनको, अरे क्यों पढ़ाई लिखाई करने का काम ही है कि कृष्ण के प्रति भक्ति करना सीखना चाहिए। ऐसा विद्या अर्जन करना, डिग्री प्राप्त करना, इससे क्या लाभ है यदि जीवन में व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं बनता। बाकी सारी चीजें आ सकती है व्यक्ति के पास, लेकिन यदि भक्त नहीं है तो उस व्यक्ति का जीवन वैसे ही है कि जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया यदि नाव में बैठा है और उसको तैरना नहीं आता। उसके प्रभुपाद कहा करते थे। तो इसी प्रकार से तो वो निमाय पंडित कहते थे सुभाष ताको, रोज सुभाष पंडित आप क्या करो, मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि आप जैसे भक्तों के आशीर्वाद से मैं क्या बन सकता हूँ? भक्त बन सकता हूँ। क्योंकि भक्त तो केवल भक्ति से भगवत भक्ता संगे न कर जाए थे, कि भक्ति भगवान की, भगवान का धन नहीं है, भगवान के पास भी भक्ति नहीं है। यदि भक्ति होती तो कृष्ण सबको भक्ति दे देते,
तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भक्त के रूप में, और तब वो क्वालिफाइड है भगवान सबको भक्ति देने के लिए, क्योंकि भक्त ही भक्ति का वितरण कर सकता है, क्योंकि भक्त का हृदय, भक्ति देवी का जो निवास स्थान है वो क्या है? भक्त का हृदय है। भक्ति को ढूंढना है, कहाँ बैठी है भक्ति देवी, तो क्या करो, भक्तों के हृदय में जाके देखो, वहां भक्ति देवी सदा विराजमान है, वृंदावन धाम में, और भक्तों के शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवत भक्ति विराजमान रहती है। तो निमाय पंडित किसी से कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, लेकिन हर समय श्रीवास पंडित के सामने वो कहा करते थे कि आप आशीर्वाद दो कि एक दिन आएगा कि मैं क्या बनूंगा, कृष्ण का भक्त बन जाऊंगा। इस प्रकार से कभी कभी, क्योंकि उस समय नवदीप में बहुत सारे विद्वान लोग थे, गीता भागवत आदि का अध्ययन करते थे, लेकिन भक्त कोई भी नहीं था, बहुत बहुत कम भक्त थे, ऐसा वातावरण ही था। सारे लोग पढ़ते थे, लिखते थे, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते थे, क्योंकि नवदीप वो स्थिति था उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय, पूरे विश्व से या पूरे भारत से लोग यहाँ शास्त्रों को पढ़ने के लिए आते थे, संस्कृत आदि को पढ़ने के लिए आते थे। कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया से लोग आते थे स्टूडेंट्स या पढ़ाई करने के लिए, और हजारों हजारों की संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स आते थे, पढ़ाई करके वापस जाते थे, फिर नए स्टूडेंट्स आते थे। इस प्रकार से ये जो नवदीप था जिसमें ये निमाय पंडित इस कार्य में लगे थे, और लेकिन वो कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा मैं ऐसा भक्त बन के दिखाऊंगा कि जो लोग अभी मुझसे दूर भाग रहे हैं वो लोग सारे मेरे संग की लालसा करेंगे, तो हम अभी इस निमाय पंडित को हमारे देश में से छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो कहते ऐसा भक्त बन के दिखाऊंगा एक दिन। तो ऐसे निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं। गया जाने के बाद वो ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं, और दीक्षा प्राप्त करके वो जब वापस आते हैं, क्योंकि जैसे ही दीक्षा लिया तो गया में ही वो कृष्ण का विरह अनुभव करने लगे, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके लक्षण प्रकट करने लगे। अभी वो भक्त बनकर ही वापस आ रहे थे गया से, और उसी समय वो वृंदावन जाना चाह रहे थे, और उसी समय वो कृष्ण के लिए पागल थे, उनको केवल एक ही शब्द आता था, कोठाए कृष्ण, कोठाए कृष्ण, कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण जोर से बोलो कृष्ण कहाँ है। हाँ, जैसे हम पूछते माया कहाँ है, हाँ, तो वहां महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कोठाए कृष्ण, कृष्ण कहाँ है। तो जैसे वो वापस आए उन्होंने देखा, सबने देखा, नवदीप वासियों ने, कि ये वही निमाय पंडित है जिससे हर कोई व्यक्ति डरता था, जो पढ़ाई मतलब पढ़ाने के लिए इतना एक्सपर्ट था, विद्वान था, अभी वही व्यक्ति कृष्ण के लिए क्या हो गया है, पूरी तरह से पागल हो गया है। और विशेष रूप से उनकी माँ भी हैरान हो गई थी, सखी माता, फिर उनकी जो पत्नी है विष्णुप्रिया, कि हमारे पति के साथ क्या हो गया, पहले तो वो अच्छा था, अभी क्या हो गया है, बिगड़ गया है। जैसे भक्ति में भी देखते हैं, इस्कॉन में कोई प्रभु जी या माता जी भक्ति करने माला पकड़ना शुरू करते हैं तो घर के लोग चिल्लाने लगते हैं, यदि पति जा रहा है इस्कॉन टेम्पल में कुछ नया तिलक सीख लिया, थोड़ा जप करना सीख लिया, तो पत्नी कहते पागल हो रहा है, क्या हो गया इसको आजकल, पहले अच्छा था, पहले घुमाने ले जाता था, इधर ले जाता था, वहां ले जाता था, अभी सारा बंद, सब तक स्विच ऑफ, एक ही उसको नजर रास्ता नजर आता है, इस्कॉन टेम्पल, ऑफिस, घर, जनरली ऐसा होता है। तो फिर विष्णुप्रिया आदि तो बहुत परेशानी महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए तो वो तीन चार भक्तों को मिले, और उनको नजदीक लेकर अपने हृदय की बात कही कि मैं आज मैंने गया में जब गया तो मैंने वहां भगवान कृष्ण के चरण कमल देखे। गया का एक नाम क्या है, विष्णुपदी है, विष्णु के चरण कमल है वहां, तो महाप्रभु ने वहां जाकर कृष्ण के चरण कमल देखे थे, और देखने मात्र से वो रोने लगे कृष्ण के लिए, वो कहने लगे यही वो चरण कमल है जिनको शिव जी अपने सर में धारण करते हैं, ब्रह्मा जिनकी वंदना करते हैं, यही चरण कमल है जिनके चरण कमल से क्या निकली है, गंगा देवी निकली है। इस प्रकार से चरण कमलों की महिमा को वो सुनते जा रहे थे, और आंखों से आंसू बहाए जा रहे थे, और उन्होंने फिर नवदीप में जब आए पहले दिन तो सारे लोगों ने उनका स्वागत किया, बहुत दिनों के बाद आए थे गया से। और फिर लेकिन देखा कि पहले जैसा निमाई नहीं है, इसमें अभी परिवर्तन आ गया है। तो परिवर्तन यही था कि ये भक्त बन गए थे। फिर उन्होंने शाम को कुछ भक्तों को बुलाया और कहा कि मैं आप जैसे भक्तों का संग में निवास करना चाहता हूँ, आपके भक्तों का संग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ भक्तों को कहा कि कल हम कहाँ मिलेंगे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में मिलेंगे, आप सब लोग वहां आए मुझे मिलने के लिए। तो उस समय ये जो सुवास आंगन है, यहाँ एक वृक्ष होता था, आरती होगा अभी, यह आरती होगा तो हम दूसरी जगह फिर हमें आगे टाइम नहीं होगा ना, 1 बजे तक हमें पहुंचना, ये पीछ में हम बैठते हैं। तो आप यहाँ तक याद रखिए, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, पेड़ तक, ठीक है, पेड़ को याद रखिए, फिर मुझे याद आएगा। आप आरती का जस्ट दर्शन करिए और वॉकिंग करना शुरू करिए चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, क्योंकि 1 बजे हमें लंच के लिए पहुंचना है, तो हम थोड़ा कथा करना चाहते हैं। हरे कृष्ण, दर्शन करके तुरंत वॉक करना शुरू करिए बाहर हमारे पीछे। चैतन्य महाप्रभु आया जा रहा हूँ ना, जो निमाय पंडित है चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आप सब भक्तों को कल शाम शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में मिलूंगा और मैं अपने हृदय को ओपन करूंगा। तो ये जो मेघ है, श्रीमान पंडित नाम के एक जो भक्त हैं, वो सुवास पंडित या सुवास आंगन में एक मेज को लेकर चले गए। सारे नवदीप के जो भक्त हैं, वो सुबह सुबह सुवास आंगन में आते थे, वहां जो कुंभ या समथिंग ऐसा एक पुष्प था, एक पेड़ था उसका, तो उस पेड़ से पुष्प चयन करने के लिए आते थे। और वर्णन आता है कि वो ऐसा वृक्ष था पूरे नवदीप में, कितने भी भक्त उसमें से फूल तोड़ते थे तो फूल वैसे ही रह जाते थे, भरा रहता था हर समय। तो हर रोज सुबह सारे भक्त वहां आते थे और अलग अलग जो न्यूज है वो एक दूसरे से शेयर करते थे। तो आज उन्होंने देखा कि जो श्रीमान पंडित है वो बहुत हंसते हुए आ रहे हैं, आनंद में आ रहे हैं। तो श्रीमान पंडित ने पूछा कि आज क्या हो गया, आप इतने खुश नजर आ रहे हो, हंस रहे हो। उन्होंने कहा, ये जो निमाय पंडित है वो क्या बन गया है, वैष्णव बन गया है, भक्त बन गया है। तो फिर सुवास पंडित कहते हैं कि वास्तव में हमारा जो गोत्र है वो बढ़ गया है। गोत्र बढ़ने का मतलब है कि हमारी जो हरे कृष्णा फैमिली है उसमें और एक भक्त क्या हो गया, ऐड हो गया। तो हमें आनंद आता है कि कोई नए लोग उनके माथे में तिलक देखते हैं, माला भी गले में लटकते हुए देखते हैं, हाँ, तो हमें उसका आनंद आता है कि अच्छा हुआ हमारे परिवार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सुवास पंडित ने भी देखा कि ये जो परिवार है वैष्णव परिवार है वो बढ़ गया है और जो निमाय पंडित है वो भक्त बन गए हैं। तो ऐसे सुवास पंडित हरिदयाल सब बाहर ज्यादा आया हुआ, हमारे लोग शांत है। हरे कृष्णा, हरे बोल। तो जो सुवास पंडित हैं, उन्होंने देखा कि पूरे नवदीप में लोग बहुत सारे पढ़े लिखे थे, गीता भागवत का अध्ययन भी करते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा था, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर रहा था। लेकिन पूरे नवदीप में एक ही फैमिली ऐसा था जो केवल नाम संकीर्तन करता था, वो सुवास पंडित का परिवार था। जो चार भाई थे और चार भाई और पूरा फैमिली मिलकर पूरे दिन या शाम को नाम संकीर्तन किया करते थे। और वो चैतन्य महाप्रभु जब निमाय पंडित भक्त बने तो फिर उन्होंने कहा कि अभी दिन में केवल कीर्तन करना उचित ही नहीं है, हम सब मिलकर दिन में भी कीर्तन करते हैं, लेकिन हमें कब कीर्तन करना चाहिए और शाम को भी कीर्तन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा स्थान कौन सा उचित है जो हम सब लोग कीर्तन कर सकते हैं, तो किसी ने कहा कि श्रीवास पंडित का घर, श्रीवास आंगन। तो सारे भक्त जो वैष्णव थे, नवदीप में जो भक्त थे केवल बहुत थोड़े थे, वो सारे श्रीवास आंगन में शाम को मिला करते थे। और श्रीवास पंडित के जो सारे गेट है आंगन के, घर के, उसको अंदर से लॉक किया जाता था और केवल गुने चुने भक्ति वहां होते थे और वो सारे मिलकर रोज शाम को कृष्ण नाम संकीर्तन करने में मग्न रहते थे। चैतन्य महाप्रभु पूरी रात गाते थे, नाचते थे और उनके भक्तों के संग में। और कुछ ऐसे द्वेषी लोग थे नवद्वीप में, कुछ ऐसे द्वेष ईर्ष्या करने वाले लोग थे, वो कहा करते थे कि ये जो श्रीवास पंडित है कुछ करता है नहीं, केवल कृष्ण के नामों का जोर जोर से कीर्तन करता है, गाता रहता है, चिल्लाते रहता है। तो वो फिर उन्होंने एक दिन क्या किया कि श्रीवास पंडित शाम को कीर्तन करके जब अपना दूसरे दिन घर का दरवाजा खोलने लगे बाहर, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में किसी ने दुर्गा देवी का जो पूजा का सामग्री है वो डाल के रखा था, मांस रखा था, शराब रखा था, लाल वस्त्र रखा था और ऐसी बहुत सारी चीजें रखी थी, शराब की बोतलें रखी थी, ताकि सारे लोगों को पता चले कि ये कृष्ण भक्त नहीं है, ये किसका भक्त है, दुर्गा का भक्त है, काली का भक्त है। फिर तो जैसे देखा कि मेरे आंगन में सारे दुर्गा पूजा का सामान पड़ा है, तो श्रीवास पंडित चिल्ला चिल्ला कर बोले कि हाँ मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, हाँ मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ। इस प्रकार से जो लोग हैं वो सोचने लगे कि वास्तव में किसी ने गंदी हरकत की है। तो फिर उस काम का सफाई आदि किया और जिस व्यक्ति ने ये घृणित कार्य किया था उनका नाम था गोपाल छप्पल। इस व्यक्ति ने किंतु श्रीवास पंडित के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के कारण ये अपराध किया था, तो उसे कुछ ही दिनों में उनको अकुष्ट रोग हो जाता है। किंतु शास्त्र कहते हैं किसी वैष्णव के प्रति हम ईर्ष्या या द्वेष या अपराध करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो 3 दिन में, 3 महीने में या 3 साल में आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करके घोषणा करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या घोषणा करता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति शिवजी के समान भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति सन्यासी ही क्यों ना हो, यदि ऐसा व्यक्ति मेरे भक्त के प्रति अपराध करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा या द्वेष आदि करता है, तो उस व्यक्ति को भी मैं क्या करूंगा, प्रगाढ़ दंड प्रदान करूंगा। तो उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है गोपाल चपल को, और उसका सारा शरीर गलने लगता है, सारा नवदीप उसको बाहर निकाल देता है शहर से, वो व्यक्ति पेड़ के नीचे गंगा के किनारे रहने लगता है। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का श्रीवास पंडित के प्रति बहुत अधिक प्रेम था। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे, दोनों का प्रेम उतना ही था जैसे श्रीवास पंडित का प्रेम चैतन्य महाप्रभु के लिए था, उतना ही प्रेम चैतन्य महाप्रभु का श्रीवास पंडित के लिए था। चैतन्य महाप्रभु एक दिन कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु जब जोर जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे, तो श्रीवास पंडित को न्यूज मिला कि उनका जो बेटा है उसने शरीर छोड़ा है घर के अंदर। जैसे घर का अंतपुर होता है, बाहर का ड्राइंग रूम होता है, फिर आंगन होता है ना, गार्डन का घर के सामने। तो चैतन्य महाप्रभु तो नाश हुए थे भक्तों के संग में और उनको पता चला कि उनका जो पुत्र है उसने शरीर छोड़ा है, और घर के अंदर गए अंदर के रूम में, तो वहां श्रीवास पंडित ने देखा कि उनकी जो पत्नी है और घर की स्त्रियां जोर जोर से रो रही है। तो श्रीवास पंडित उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप रोना बंद करो, आप यदि रोना नहीं बंद करोगी तो मैं अपने गले में मटका बांध लूंगा और गंगा में जंप लगाऊंगा, मतलब अपने शरीर को त्यागूंगा, क्योंकि हमारे आंगन में जिनका स्मरण करने से या जिनका मुख कमल दर्शन करने से हाँ, व्यक्ति जन्म मृत्यु के इस चक्कर से छूट जाता है, ऐसे गौरांग महाप्रभु साक्षात नृत्य कर रहे हैं। तो मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा, ये कोई अशुभ चीज नहीं है, ये चीज क्या है, शुभ है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा भाग्य मुझे मिलना चाहिए था। कौन कह रहे हैं? सुभाष पंडित। कहते कि आपकी आवाज बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके कीर्तन आदि में बाधा आ जाए। तो इस प्रकार से उनका प्रेम महाप्रभु के लिए था। तो सारे भक्तों को धीरे धीरे पता चला कि घर के अंदर उनके पुत्रों ने शरीर छोड़ा है, लेकिन सुभाष पंडित किसी को भी नहीं बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात अंतर्यामी है। तो समझ गए, उन्होंने कहा कि आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन में, अब कुछ तो अशुभ हो गया है। तो फिर किसी भक्त ने कहा कि हे गौर हरि, कि ये जो सुभाष पंडित है, इनका जो बालक है, उसने शरीर छोड़ा है। तो जैसे ये सुना, चैतन्य महाप्रभु के या गौरांग महाप्रभु के आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा कि इतना प्रेम सुभाष ठाकुर मुझसे कर रहे हैं, मैं ऐसे है जो मुझसे इतना प्रेम करते ऐसे लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि आगे चलकर उनको क्या करना था, संन्यास लेना था। उस समय उन्होंने बोला था, वो हिंद दिया था कि ऐसे इतना मुझसे आसक्त है, इतना मुझसे प्रेम करते सारे भक्त, ऐसे भक्तों को छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और उन्होंने सुभाष पंडित का हाथ पकड़कर अंदर गए। अंदर देखा कि सिया बिल्कुल धीरे धीरे आवाज में रो रही थी उस बच्चे के शरीर के पास बैठकर। और महाप्रभु जैसे गए, उस बालक को उन्होंने पकड़ा और कहा कि ये बालक उठो। वो बालक क्या हो गया, उसके बैठ गया। तो सारी स्त्रियां सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, जैसे वो उठा और महाप्रभु ने प्रश्न पूछा उस बालक को, तुम क्यों चले गए हो यहाँ से। तो उस बालक ने कहा कि आप वास्तव में मेरे स्वामी हैं और आपकी इच्छा के कारण ही कोई जीव किसी शरीर में निवास कर सकता है या किसी शरीर को छोड़ के जा सकता है और आगे दूसरा शरीर ग्रहण कर सकता है, केवल इच्छा मात्र, आपके इच्छा के कारण। तो वो बालक बोलने लगा कि ये गौर हरि, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपका जो कीर्तन विलास है, कीर्तन लीला है, उसको मुझे सुनने का या देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। और मैं मुझे ये परवाह नहीं है कि मैं आगे कौन से शरीर में चला जाऊं, चाहे आगे मुझे किसी भी शरीर में जाना पड़े, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है, कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों को भूलू ना, मैं कभी भी आपको भूलू ना, हर समय मैं आपका स्मरण करते रहूं। ये मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, चाहे मुझे चाहे कुत्ते का शरीर लेना पड़े, बिल्ली का शरीर लेना पड़े या किसी मनुष्य का शरीर लेना पड़े, लेकिन हर समय मैं आपका स्मरण करते रहूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वही कहा शिक्षा उसके श्लोक में कि मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी। कोई महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि मुझे अभी अगला जन्म नहीं चाहिए, जन्मनि जन्मनि मतलब मुझे चाहे जन्म भी लेना पड़े, लेकिन मेरे हृदय में क्या होना चाहिए, आपके लिए भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो सुभाष पंडित है, जिनका चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के लिए प्रगाढ़ प्रेम था, और चैतन्य महाप्रभु का भी इतना अधिक प्रेम उनके पूरे परिवार के लिए था, क्योंकि उनके पूरे परिवार में सारे शुद्ध भक्त थे। इवन चैतन्य महाप्रभु एक दिन कीर्तन कर रहे थे आंगन में, तो उन्होंने देखा कि इतने सारे भक्त नाचते हैं, गाते हैं। उन्होंने एक दिन देखा कि पानी का जो घड़े हैं, घड़े क्या कहते हैं, पॉट कहते हैं ना, घड़े कहते हैं ना, मटका, वो लाइन में लगा हुआ है बहुत सारा। और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से पूछा, ओ श्रीवास, ये सारा हम जब नाचते हैं गाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कभी कभी इतना मग्न होते थे और कभी कभी उधर ही स्नान करते थे, तो सारे भक्त घड़े घड़े जल उनके सर में डालते थे। तो एक दिन महाप्रभु ने इतना सारा जल देखा, उन्होंने कहा कि हे सुभाष, इतने सारे भक्तों को जल लाने की सेवा कौन करता है, कौन है वो। तो उसी समय एक जो सुभाष पंडित के घर के जो सेविका है, दासी है, जो मेड है, वो उसका एक अच्छा गुण था। एक गुण तो था भक्तों की सेवा करना, दूसरा था कि जब भी वो महाप्रभु का कीर्तन देखती थी और कीर्तन सुनकर और देखकर उसके आंखों से क्या होते थे, आंसू बहने लगते थे। तो ऐसी जो उन्होंने पूछा क्या नाम है उसका, तो सुभाष पंडित ने कहा कि उसका नाम दुखी है। क्या नाम है? दुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, जो कृष्ण के नाम संकीर्तन में भाग ले रहा है, जो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है, वो दुखी कैसे हो सकता है? आज से आप सब लोग इसको क्या पुकारो? सुखी। आज से आप इसको सुखी कहो। तो वास्तव में वो सुखी हो गई, क्योंकि वो कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की सेवा में अपना मन वाणी और शरीर को उन्होंने लगाया था। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सुभाष तुम मुझे इतना प्रिय हो कि तुम्हारे घर में रहने वाली दासी या सेविका या तुम्हारे घर में रहने वाला कुत्ता बिल्ली वो भी क्या है मेरे लिए बहुत अधिक प्रिय है। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन उनके घर में जा रहे थे सुभाष आंगन में, तो उस समय उन्होंने देखा कि एक टेलर का दुकान था साथ में, मुस्लिम टेलर था, और वो मुस्लिम टेलर चैतन्य महाप्रभु को देखकर वो क्या कह रहा था, चिल्लाने लगा अचानक। गौरांग महाप्रभु चल रहे थे और उनको देखकर वो टेलर चिल्लाने लगा, वो कहने लगा मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। अब आसपास के लोग सोचने लगे इसने क्या देखा, हम यही चीज देख रहे, कुछ नया तो देखा नहीं, लॉर्ड चैतन्य चल रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस मुस्लिम टेलर के ऊपर कृपा की थी, क्योंकि वो किसके कपड़े सिलाता था, सुभाष पंडित और उनके फैमिली लिखे वो टेलर उनका कपड़े सिलाता था, और वो फेथफुल था और सेवा का भाव था सुभाष पंडित आदि के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस टेलर को देखते हुए अपना जो ये गौर हरि का रूप है, उसको गौर सुंदर का रूप है, उसको कौन सा रूप बनाया था, शान सुंदर त्रिभंग रूप उन्होंने प्रकट किया। और वो टेलर देखने मात्र से चिल्लाने लगा मैंने देखा, किसको देखा था उसने, कृष्ण को देखा था। इस प्रकार से वास्तव में हमारा जीवन सफल होता है जब हम भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं। इवन सुभाष पंडित के संपर्क में कोई भी आया, चाहे टेलर आया या फिर कोई सेविका आ गई, कुत्ते आ गए, बिल्ली आ गए, सब आ गए, वो भी उतना ही चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण के कृपा के पात्र बने जितना सुभाष पंडित थे। एक ही गुण एक ही शिक्षा हमें सीखनी चाहिए कि जो भगवान के भक्तों का संग है उससे हमें दूर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा गोदावरी के किनारे साउथ इंडिया में कि आप ये मुझे बताओ कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय ने क्या कहा कि भक्तों का संग से दूर चले जाना, भगवान के भक्तों के संग को नहीं प्राप्त करना, ये वास्तव में क्या है, सबसे बड़ा दुख है। तो इसलिए भगवान से हमें नियमित रूप से हर समय प्रार्थना करनी चाहिए कि एन तेनो प्रकार एन किसी न किसी प्रकार से मुझे क्या करो, आपके भक्तों के संग में रहने दो, वहां पड़े रहने दो, ताकि मुझे आपके भक्तों के संग से आपका स्मरण हो सकता है। वैसे भगवान का स्मरण या भगवत भक्ति करना बहुत कठिन है, लेकिन भक्तों का संग होता है तो हमें भगवत भक्ति करना इजी हो जाता है। जैसे डिवोटी सारे एक हॉल में रहते हैं तो कभी कभी अलग अलग होते तो हम मंगल आरती नहीं जा पाते, हमारा मन कहते ठीक है दो तीन लोग एक रूम में होते हैं तो बहुत टफ होता है, लेकिन यह पूरा ग्रुप है, यह पावर ऑफ एसोसिएशन है, एक उठ गया दो तीन चिल्लाने लगे तो बाकी सो नहीं सकते। इच्छा नहीं भी है मंगल आरती जाने की तो भी क्या होगा, जागृत हो जाएगी वो इच्छा, नहीं भागना है, दौड़ना है, तैयार होना है, तिलक लगाना है, वो चला गया मैं भी भागो, हाँ तो इच्छा हमारी बढ़ती है भक्ति करने की। इस प्रकार से हम केवल अपने आप को भक्तों के संग में रखते हैं तो हम भक्तों का संग हमें भगवान के क्या करता है, नजदीक ले जाता है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर जिनका कृष्ण के नामों के प्रति बहुत प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी से नवदीप वापस आए थे एक बार, तो सुभाष पंडित उनको मिलने आए, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे जब बात कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हे श्रीवास मुझे बताओ तुम गृहस्थ हो, तुम अपना गृहस्थ जो चलाने के लिए किसी ऑफिस में नहीं जाते, कोई बिजनेस नहीं करते, कुछ काम धाम करते नहीं, गृहस्थ लाइफ रन कैसे करते, इतने बड़े फैमिली चार भाई है, पत्नी है, इतने सारे बच्चे हैं, सब कुछ है, कैसे मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो केवल क्या करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन्होंने कहा आपको तो मांगना चाहिए जाकर, लोगों को अलग अलग दरवाजे में जाकर मांगना चाहिए, ऐसे आप चलाते हैं। तो उन्होंने कहा, तो सुभाष पंडित बोले, सुभाष पंडित ने क्या किया, तो क्या सीक्रेट क्या है आपका? तो उन्होंने क्या किया, आपने तीन तालियां बजाई, लगाइए तीन तालियां, 1 2 3 बस। तो उन्होंने तीन तालियां बजाई, तो महाप्रभु ने कहा ये क्या है तीन तालियां, आप बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा ये जो रहस्य है। तो उन्होंने कहा मेरा रहस्य क्या है कि मैं आपका नाम संकीर्तन करता रहूंगा मुख्य रूप से अपने पूरे परिवार आदि के साथ, और तीन तालियां का मतलब है तीन दिन यदि मेरे घर में अन्न आदि नहीं प्राप्त हुआ नहीं आया तो चौथे दिन में सारे फैमिली मेंबर के गले में मटका बांध लूंगा और गंगा में जाकर कूद लगाऊंगा, इतना सेफ। तो महाप्रभु उठ गए, खड़े हो गए और आलिंगन करते हुए शिवास को कहा कि शिवास तुम्हारा इतना श्रद्धा मेरे नामों के प्रति, मेरे प्रति इतना प्रगाढ़ सेफ। उन्होंने कहा कि ये जो लक्ष्मी है उसको भी एक दिन भीख मांगने का समय आ सकता है, उसके हाथ में भी एक दिन क्या हो सकता है, कटोरा हो सकता है भीख मांगने के लिए, लेकिन तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम सदैव क्या करते हो,
हरे
हरे राम हरे राम राम राम। और यही वास्तव में धन है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद 40 रुपए लेके गए थे, लेकिन प्रभुपाद अपने कविता में लिखते हैं, पोएम में लिखते हैं कि हे कृष्णा, मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है, ना मुझमें भक्ति है, ना वेद मीन्स नॉलेज, ना ज्ञान है, लेकिन मुझे ये भक्ति वेदांत टाइटल मिला है, लेकिन एक चीज मुझमें है, क्या है एक चीज, कि आपका जो पवित्र नाम है उसमें मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है, बस यही एक गुण है मुझ में। तो इसी प्रकार से शिवा शास्त्री का ये प्रगाढ़ गुण था कि चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण नाम संकीर्तन या कृष्ण के पवित्र नामों में उनके पूरे परिवार का पूर्ण रूप से फेथ था, बिल्कुल दृढ़ थे भगवान और भगवान की भक्तों की सेवा के लिए। इस प्रकार से शिवा पंडित के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, सभी हम उनके जीवन के बारे में ग्रंथों से सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ऐसे शिवास पंडित या शिवास आंगन वृंदावन की जो रास लीला स्थली है उस वो है। शिवास आंगन क्या है वृंदावन में, रास लीला स्थली जो वंशी वट में है, अब शायद यमुना के किनारे वो स्थान है, वो स्थान यहाँ नवदीप में शिवास आंगन के रूप में है। तो ये जो शिवास आंगन है, चैतन्य महाप्रभु ने कभी बाहर जाकर कीर्तन शुरू नहीं किया था, लेकिन शिवा सांगन में चैतन्य महाप्रभु अंदर डोर क्लोज करके कीर्तन करते थे, लेकिन एक दिन इतना जोर जोर से कीर्तन करते थे, कई सारे जो नॉन डिवोटीज थे, ब्राह्मण थे, स्मार्ट ब्राह्मण थे, वो सब लोग जो दरवाजे का छेद था उसमें से देखा करते थे और कहते थे इतना अच्छा वंडरफुल कीर्तन हो रहा है, हमें भी अंदर आना है, हमें भी भाग लेना है। तो लेकिन वो क्या थे, शुद्ध भक्त नहीं थे, उनको अलाउड नहीं था। तो फिर एक ब्राह्मण गंगा के किनारे गया था स्नान के लिए और चैतन्य महाप्रभु उसी समय स्नान करके वापस आ रहे थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया, विनायक पंडित को, उन्होंने अपना जमे निकाला और उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया, कि तुम हमें एंट्री में करवाते हो अंदर, किसमें एंट्री में करवाते, कीर्तन में। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भौतिक सुख है वो क्या हो जाए, टोटली खत्म हो जाए। तो महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि भौतिक जीवन में सुख है ही नहीं, और सुख है भी तो वो क्या है, भ्रम है, इल्यूजन है। इस प्रकार से उसका परिणाम क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को क्या लेना पड़ा, संन्यास लेना पड़ा, उनका भौतिक जीवन शून्य हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु शिवा सांगन में उन्होंने बहुत सारा कीर्तन आदि किया और कई सारी लीलाएं की। फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका ये निवास स्थान था जहाँ हम बैठे हैं, इसको योग पीठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग पीठ कहते हैं। योग पीठ का मतलब है योग का, योग शब्द का अर्थ क्या है? जुड़ना, कनेक्ट होना, जैसे भक्ति योग। तो ये योग पीठ है कि भगवान जब आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं और पृथ्वी तक जो पॉइंट है जिससे कृष्ण डायरेक्ट अपने आप को क्या करते हैं, ले आते हैं, उस स्थान को योग पीठ कहा जाता है। वृंदावन में भी योग पीठ है, जो गोविंद देव टेम्पल है बड़ा है, उसमें आप जाएंगे तो स्थान है जिसे योग पीठ राह भी कहा जाता है। तो ये योग पीठ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, यहाँ सची माता जगन्नाथ मिश्र निवास करते थे, जिनके पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कई सारी जो अपनी बाल लीलाएं हैं यहाँ प्रकट की। और हम आशा करते कि जो प्लेज होंगे शायद बाल लीला पर ही होंगे ना, दो तीन प्लेज, तो उसमें आप ये लीलाएं सुन सकते हो, देख सकते हो, स्मरण कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पहले स्थान, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आने से पहले जो मायापुर है वो नदी के उस पार कहा जाता था, आज भी वहाँ चैतन्य महाप्रभु का एक जन्म स्थान है नदी के उस पार। उधर भी शिवा सांगन है, उधर भी अद्वैत भवन है, लेकिन वो क्या है, मन वर्णन बनाया हुआ है पहले ही। तो जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आए तो भक्ति विनोद ठाकुर का घर इधर से सीधा जाते तो जालंग नदी है, जालंग नदी के उस पार भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। और भक्ति विनोद ठाकुर घर के ऊपर जब छत पर गए शाम को अपने पुत्र विमला प्रसाद के साथ, तो उनको दूर से ही दिखाई दिया, इसी स्थान में बहुत बड़ा प्रकाश निकलते हुए दिखाई दे रहा था। तो दूसरे दिन सुबह सुबह दौड़ के आए इस स्थान में देखा, तो इस समय इस स्थान का नाम मियापुर था। तो उन्होंने देखा और फिर लोकल जो फार्मर्स वगैरह थे उन सबको पूछा कि कोई ऐसा स्थान है, फिर उन्होंने मुस्लिम्स ने कहा कि एक स्थान है यहाँ जहाँ केवल तुलसी आती है, दूसरी कोई चीज यहाँ उगती नहीं। तो ये सारा स्थान तुलसी से भरा हुआ था। जब भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ आए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर कंफर्म किया, सारे ग्रंथों से चेक किया और फिर उनको उन्होंने यहाँ फिर ढूंढ के निकाला कि यही वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, जो टेम्पल बनवाया, जब टेम्पल की खुदाई हो रही थी तो उस समय विष्णु के एक विग्रह मिले, शिरोदक शाही विष्णु या ऐसे कुछ नाम है उनका, मैं भूल गया, वो विष्णु के विग्रह आज भी आल्टर में है। तो वो जो विग्रह है वो सची माता और जगन्नाथ मिश्र उनकी पूजा करते थे। तो तब से कंफर्म हुआ कि यही वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, या चैतन्य महाप्रभु इसी स्थान में प्रकट हुए थे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि यहाँ एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। तो कई सारे बहुत धनवान लोग उनको अप्रोच करने लगे, उन्होंने कहा कि हम सारा धन देंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत बड़ी सेवा है, कोई एक व्यक्ति क्यों करे, सारे लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता या गांव गांव में गए और हर एक व्यक्ति को रिक्वेस्ट किया कि एक फैमिली को या एक व्यक्ति को केवल एक रुपया डोनेशन देना है। कितना डोनेशन? ताकि सारे लोग इस टेम्पल की सेवा में लग सकते हैं। तो उन्होंने एक रुपये से ज्यादा किसी से डोनेशन नहीं लिया और उस कई सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, गांव की गांव, सिटी, शहर, कलकत्ता आदि सब इन्वॉल्व हो गए, ज्यादा ज्यादा लोग, और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो यहाँ यही वो नीम ट्री है, ये नहीं है नीम ट्री, लेकिन यहाँ वो नीम ट्री था पहले, जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, जिनके कारण उनका नाम क्या पड़ा, निमाई पड़ा। तो ये निमाई नाम वास्तव में उन्होंने दिया था, अद्वैत आचार्य की जो पत्नी है सीता ठाकुरानी ने उनको दिया था निमाई। और जो उनके पिता थे जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने उनको गौरांग नाम लिया, जब उनको देखा कि उनका वर्ण कैसे है, गोरा वर्ण है, इसलिए जगन्नाथ मिश्र ने उनको गौरांग नाम से पुकारने लगे। और जब उनका नामकरण सेरेमनी आया तो उनके जो नाना जी थे नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने नाम दिया, कहा कि ये जो बालक है ये तो सर्वसाधारण बालक नहीं है, इसमें जो महापुरुष के 32 लक्षण है वो सारे प्रकट हो रहे हैं और ये पूरे विश्व का पालन करने वाला है, तो इसका नाम विश्वंबर होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? और फिर जितनी भी स्त्रियां थी उन स्त्रियों ने मिलकर नाम दिया गौर हरि। क्या नाम दिया? तो सब जब ये नाम मिला तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बालक थे तो बहुत खुश थे, तो जैसे जन्म जिस दिन उनको प्राप्त हुआ उसी दिन से उन्होंने नाम संकीर्तन शुरू किया था। चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा में जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे और उस दिन पूरे भारत में चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था। तो उस समय ये सोचा जाता है कि ग्रहण के कारण सारी चीजें अशुद्ध हो जाती है, तो सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं ताकि स्नान करके शुद्ध हो जाएं। तो सारे लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और साथ साथ कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु आने का एकमेव कारण है कि वो नाम संकीर्तन के द्वारा सबको अपनी भक्ति प्रदान करना चाह रहे थे। और जब वो प्रकट भी हुए तभी भी लोग कीर्तन करने लगे, और जब वो छोटे बालक थे तो वो रोना शुरू करते थे, रुकते नहीं थे। फिर कैसे रुकते थे? जब सारी स्त्रियां मिलकर कृष्ण नाम का कीर्तन करती थी तब वो रुक जाते थे। और कभी कभी स्त्रियां जानबूझ के आती थी कि कब ये रहेगा, हाँ, ताकि हमें क्या करने को मिलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के कई सारी बाल लीलाएं हैं जो यहाँ घटित हुए थे। कृष्ण के समान ही उन्होंने कई सारी लीलाएं दी थी। वो अपने कुछ मित्रों के साथ आसपास के घरों में माखन चोरी करने जाते थे, दही लेते थे, छोटे छोटे बच्चों के कान में पानी डालते थे, वो बेचारे चिल्लाते रहते थे। और सुबह सुबह ये पूरा छोटे बच्चों का महाप्रभु का जो ग्रुप था निमाय पंडित का, छोटे से बालक सुबह सुबह सबके घरों के बाहर जाकर कुंडी लगाते थे, तो सबसे जो नेचर कॉल आता था तो चिल्लाते रहते थे लोग घर के अंदर। पर कभी कभी उनके जो केले का बाग होता था, बाग कहते हैं ना गार्डन, केले का जो पेटी है, तो उसमें जाकर सारे केले तोड़ देते थे, खा जाते थे, लेके आते थे। इस प्रकार से कई सारी उन्होंने बाल लीलाएं की और कई सारे रोज ब्राह्मण नवदीप के सारे जगन्नाथ मिश्र के पास आते थे और वो कहा करते थे कि आपका ये जो पुत्र है आप तो घर से स्कूल भेजते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाता, 6 घंटे ये कहाँ रहता है, गंगा में स्नान करता है। और वो सारे ब्राह्मण आए और वो चिल्लाते हुए कहने लगे कि मैं जब गंगा के किनारे ध्यान करने बैठता हूँ तो ये मेरे ऊपर पानी मारता है, कहता किसका ध्यान कर रहे हो, मेरा ध्यान कर रहे हो। या कोई ब्राह्मण कहता है कि मैं जब गायत्री अपना जनेऊ हाथ में लेकर पानी के अंदर छाती तक या कमर तक खड़ा होता हूँ, गायत्री का जप करता हूँ तो ये नीचे डूब के मेरा पाँव खींच के मुझे गिरा देता है। या फिर वो इस प्रकार से वो कहते हैं, ब्राह्मण सारे कंप्लेन करने लगे उनके पिता के पास, हाँ सर कहते कि जब माताओं का घाट अलग होता था उनके कपड़े अलग जगह रखे जाते थे, जो ब्राह्मण प्रभु है उनके कपड़े अलग जगह रखे जाते थे, तो हम लोग जब स्नान करने जाते हैं तो ये क्या करता है, कपड़े चेंज करता है, माताओं के कपड़े उधर और प्रभु के कपड़े उधर। इस प्रकार से सारे लोग रोज इतनी कंप्लेन करते थे कि जगन्नाथ मिश्र परेशान हो जाते थे। और इतने नहीं, जो गांव की जो स्त्रियां हैं या जो बालाएं हैं लड़कियां हैं वो सब आके कंप्लेन करते थे, ये सारी जो लड़कियां हैं युवा लड़कियां वो ले जाती थी प्रसाद, ले जाती थी भोगा या फूल, ले जाती थी माला, ले जाती थी। और वो किसकी पूजा के लिए ले जाती थी, शिव जी की पूजा के लिए, ताकि हमें अच्छा पति मिले। तो ये क्या करते थे, किसके लिए माला लेके जा रहे हो, माला लेते थे, कहते मुझे ही माला पहना है, ये शिव जी तो मेरा सेवक है, तो मेरा दास है। तो कुछ जो लड़कियां भाग जाती थी, कहते आप मुझे ऑफरिंग नहीं करोगे, हाँ वो कहते जो मुझे माला और प्रसाद देगी उसको बहुत अच्छा पति मिलेगा। और जो भाग जाते थे उनको कहते थे कि आपको ऐसा पति मिलेगा जो बूढ़ा होगा और जिसकी 4 और पत्नियां होगी। तो बेचारी सारी भाग पे आते थे और उनको माला आदि देते थे और कभी कभी ये सारी ये सचि माता के पास आकर कंप्लेन करती थी। सारे ब्राह्मण किसको कंप्लेन करते थे? जगन्नाथ मिश्र को। और वो कहती थी कि कभी कभी मुंह में पानी लेता है ये अपने मित्रों के संग में, अगर हम आगे चलते हैं तो मुंह में पानी से क्या कहते फेंकता है, पानी मारता है। इस प्रकार से बहुत सारी कंप्लेंट एक दिन आई तो जगन्नाथ मिश्र ने डंडा उठाया और वो डंडा लेकर दौड़ने लगे गंगा के किनारे। तो उसी समय उनके मित्रों ने कहा कि गौर हरी हिमाय आपके पिता आ रहे हैं, देखो जगन्नाथ मिश्र आए बहुत क्रोध में है, डंडा लेकर आ रहे हैं। तो उस समय उन्होंने देखा कि अरे सही में पिताजी आ रहे हैं। उनको पता चलेगा कि मैं स्कूल नहीं जाता, गंगा के किनारे स्कूल के सारे पाठ पढ़ाता हूँ या पाठ लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अपना बुक बैग उठाया और भागने लगे, भाग भाग कर घर पहुंचे पिताजी आने से पहले। तो जब ये आए तो सबको पूछा तो एक ब्राह्मण ने कहा कि आपका बेटा बहुत एक्सपर्ट है, वो भाग के चला भी गया घर। तो फिर किसी ने कहा, उन्होंने देखा कि सही में उनका पिता बहुत गुस्सा हो गया है, डंडा हाथ में है। एक ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं हाँ वो बहुत अच्छा लड़ता है। वो कहते हैं वो ब्राह्मण, फिर उन्होंने कहा आप सब लोग तो रोज कंप्लेन करने के लिए आते हैं। तो कहते कंप्लेन एक बहाना होता है, जो भी करते हैं हमें अच्छा लगता है। इस प्रकार से वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के जो कार्यकलाप है, चाहे उनकी बाल लीलाएं हैं या उनकी सन्यास के बाद की जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं, वो सारी आकर्षक है। और वो सारी लीलाओं का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, भौतिक जगत के विषयों में मग्न है, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में क्या हो जाए, आकृष्ट हो जाए। तो ये योग पीठ है जहाँ हमें चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, ताकि हम भगवान का जो नाम संकीर्तन है इसमें अधिक से अधिक मग्न हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की योग पीठ की पापे नैदान के पिताय बोल पे नारंदे अरिंदो। तो हम आगे जाएंगे इस कौन टेम्पल। तो हम एक सीमांत द्वीप में गए थे पहले, कि ये है अंतर द्वीप। कौन सा द्वीप है तो वो बताना भूल ही गया मैं। तो अंतर द्वीप इसलिए है क्योंकि जब कृष्ण लीला में द्वापर में, क्योंकि कृष्ण को पहचानना, उनके लीलाओं को समझना देवताओं के लिए भी कठिन है, देवता लोग भी गलती करते हैं। ब्रह्मा ने समझ में पाए कि ये भगवान है कृष्ण, जब वो बाल लीला कर रहे थे गोप सखाओं के साथ, बछड़े या गवे चरा रहे थे। इंद्र भी समझ में पाए ये क्या है, गोपों के संग में खेल रहा है नाच रहा है, तो इससे भगवान हो सकता है। तो ब्रह्मा ने क्या गलती की थी, ब्रह्मा ने क्या किया था गलती, उनके बछड़ों को और नेत्रों को चोरी की थी। तो फिर ब्रह्मा को पता चला कि कृष्ण फिर से कलयुग के शुरुआत में गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो उस समय ब्रह्मा इस स्थान में आए, नवद्वीप में आए, इसी स्थान में आकर गौरांग महाप्रभु के नामों का कीर्तन करने लगे, रोने लगे उनकी कृपा के लिए, प्रार्थना करने लगे कि आप फिर से अभी कलयुग में लीलाएं करने जा रहे हैं, मैंने पहले भी एक गलती की थी जब आप कृष्ण के रूप में आए थे साक्षात परम भगवान, और अभी गौरांग महाप्रभु के रूप में आएगे तो अभी इस लीला कार्य में फिर से गलती ना करें, तो मेरे ऊपर कृपा करो। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे ब्रह्मा के लिए गौरांग महाप्रभु, और उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा पद है, ब्रह्मा का पद क्या है, बहुत बड़ा है, आप मुझे क्या करो, एक नीच व्यक्ति बना दो, तुच्छ व्यक्ति बना दो, ताकि मैं सिंपल बन के रहूं, किसी की आंखों में ना आ जाऊं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मान सम्मान आदि से रहित हो जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करो कि आपका नाम कीर्तन में सदा लगा रहे, बस ये मुझे आप कृपा करो। तो जब ये गौरांग महाप्रभु को ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि आप मुस्लिम परिवार में जन्म लोगे हरिदास ठाकुर के रूप में। किस रूप में? हरिदास ठाकुर के रूप में, यवन कुल में, और आप निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मैं मैं उस समय आऊंगा, किसलिए आऊंगा, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम भक्ति है, श्रीमती राधिका मेरी सेवा करके जो आनंद अनुभव करती हैं, वो क्या चीज है, उसको जानने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा। वो मेरे अंदर की बात है, अंतर की बात है। तो उन्होंने कहा अब इसको किसी से रिलील मत करो, इसलिए इस द्वीप का नाम क्या पड़ा, अंतर द्वीप, मतलब अपने हृदय की बात को उन्होंने ब्रह्मा के सामने प्रकट किया, इसलिए इस स्थान को अंतर्द्वीप कहा जाता है। और ये अंतर्द्वीप में ही शिवा संगम और ये सारे स्थान आते हैं, चैतन्य गौड़ी मठ, योगपीठ और इस्कॉन टेम्पल भी है। दो अलग अलग ग्रंथों में वर्णन आता है कि इस्कॉन टेम्पल रुद्र द्वीप में आता है या फिर अंतर्द्वीप में आता है। जनरली भक्त कहते हैं इस्कॉन टेम्पल भी अंतर्द्वीप में आता है। तो हम देख सकते कि ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए यहाँ आश्रय ग्रहण करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि मुझे छोटा से छोटा जन्म दे दो ताकि मैं आपका निरंतर नाम संकीर्तन करता रहूं। गौरांग महाप्रभु की नित्यानंद राम की जय, गौर प्रेमानंद।